तो आइए इस तकलीफ के साथ पढ़ते हैं कि अल्लाह आज के उम्मत मुस्लिमा के माली बिगाड़ की इसलाह कर दे। वइला मदयना अखाहुम शुऐबन, और मदियन की तरफ भेजा हमने इनके भाई शुऐब को। फ़क़ाल या कौमे बुदुल्लाह, उन्होंने कहा मेरी कौम के लोग अल्लाह की इबादत करो। सेम पैगाम। और वरजुल यौमल आखिरा, और उम्मीद रखो आखरत के दिन की। वरजू का लफ्ज़ क्या है? रिजा से, रा जीम हमजा इसका रूट है। उम्मीद करो, अल ईमान बैनल खौफ वर रिजा, उम्मीद रखो। इसी चीज की बात का हुक्म दे दिया गया कि तुम ये काम करो। किसका हुक्म दिया? दो बातों के करने का हुक्म। क्या? नंबर एक ओबुदुल्ला, और दूसरा इरजुल यौमल आखिरा। और अब दो बातों से रोक रहे हैं। किस चीज से? वला तासौ फिल अर्दी, और ना जमीन में फिरो तुम मफसद बनकर, मुफसदीन फसाद कर। यानी दो चीजों के करने का हुक्म दिया, दो चीजों से बचने का हुक्म दिया। क्या कहा? कि तुम दुनिया में मुफसिद ना बनो, और ऐसा बिगाड़ ना पैदा कर दो कि तुम्हारी वजह से इस दुनिया से अल्लाह सुबहाना ताला की बरकतें और रहमतें चली जाएं। याद रखिए कि फसाद क्या होता है, कि एक तो होता है जाहरी तौर पे फसाद, जंगें, लड़ाइयाँ, झगड़े, वो तो होता ही है। मिसाल है कि किसी जगह कोई कौम हमला कर देती है तो उधर पानी को प्ल्यूट कर दिया जाता है, दरख्तों को गिराया जाता है, इमारतों को गिराया जाता है। लेकिन जब किसी कौम में इकोनॉमिकली डिसऑर्डर आ जाता है तो वहां अंदरूनी बिगाड़ ऐसा पैदा हो जाता है कि नेक से नेक और अच्छे से अच्छे लोग बेचारे मजबूरन इन गंदी चीजों में मुलविस हो जाते हैं। वो कहते हैं सर्वाइव नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का लॉ है, ये मजबूरी है। तो लिहाजा उनको समझा रहे हैं कि देखो तुम क्या हो। अगर देखे तुम्हारी जिंदगी, पूरी जिंदगी क्या है? चार दिन की है। एक दिन था हमारा दुनिया में आने से पहले का, दूसरा है ये आज दुनिया का जो हम गुजारे हैं, तीसरा है हमारा बरजख का, और चौथा होगा यौम आखिर। इसलिए कहा वर्जुल यौम आखिर, कि इस दुनिया में रहते हुए बड़े से बड़ा नुकसान इस उम्मीद पे पूरा कर लो कि कल आखिरत में मुझे इसका अजर मिलेगा। कितनी खूबसूरत दावत थी, लेकिन कौम ने क्या किया? फकज़्ज़बू हो, चुटला दिया उसको। भला क्यों? माल पे चोट पड़ती थी। सबसे ज्यादा लोगों को दीन की वो बात बुरी लगती है जिसका माश पे असर पड़े, जिसके लिए जॉब छोड़नी पड़े, जिसके लिए कारोबार बदलना पड़े, जिसके लिए घर बेचना पड़े, कि ये क्या हो सकता है। तो बस फकज़्ज़बू, छुटला दिया। फ़ग़ज़त हुम रज़फ़ा, बस पकड़ लिया उनको जलजले ने। फ़सबहु फ़ी दारिहिम जासिमीन, तो हो गए वो अपने घरों में औंधे मूंगिरे हुए। ये था इसका अंजाम। क्या आज जिस तरह हराम और सूद और गलत चीजों का काम है, क्या आज ये पकड़ नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ रही? अल्लाह के नबी की दुआ है। आपने फरमाया था कि अल्लाह जिस तरह पहली कौमें अजाबों का शिकार होकर तबाह हो गई, मेरी उम्मत को इस तरह ना करना। फिर क्या हुआ उनके बाद? वाद व समूदा, और आद और समूद। वक़द तबयन लकुम मिन मसाकिनिहिम, और तुम पर तो वाजे हो चुके उनके घर। यानी किन पर वाजे हो चुके हैं? आप सब बोलिए। मक्का वालों पे, नबी सल्लम पे, रास्तों से गुजरते थे, किधर थे, क्या था, का को ढकी छुपी बात नहीं है। वज़यन लहुम शैतान अमालहुम, और शैतान ने मुज़य्यन कर दिए थे इनके बुरे अमाल। शैतान इनके बुरे कामों को खूबसूरत करके दिखा देता था। फसद्दहुम अनिस सबील, और रोक दिया था उसने इनको सीधे रास्ते से। हालांकि वकानो मुस्तबसिरीन, बड़ी समझ बूझ रखने वाले लोग थे, इसके बावजूद भी उनकी मत मारी गई, अकल मारी गई। ये लफ्ज मुस्तबसिर समझ लीजिएगा। लफ्ज क्या होगा इसका रूट? आप सब बोले मिलके, बा स्वाद बसरा। उर्दू में बोलते हैं ना बसीरत, वही लफ्ज है। लेकिन मुस्तबसिर कैसे बना? बाब इस्तिफाल में। इसका मानी होता है गौर से देखना, बारीक बीन, बड़े मुख्तात, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग रखने वाले, होशियार, दानश्वर, ये सब इसके मानी में आएंगे। इतने समझदार थे, इंटेलेक्चुअल थे दुनियावी एतबार से, लेकिन उनको सीधी राह नहीं दिखी। आज भी ऐसे ही है। बहुत समझदार इंसान अपनी नाक के नीचे के पत्थर से ठोकर खा जाता है। आज के दौर में साइंसदानों की मिसाल लीजिए, कैसी कैसी जायदाद कर रहे हैं, कायनात को कैसे कैसे हकायक तक उनकी रसाई है। अरबों खरबों नूरी साल के फासलों को इन्होंने नाप लिया, सितारों पे कमंदे हैं, कैसे कैसे आलात हैं, लेकिन क्या नहीं दिखता? खालिक कायनात नहीं दिखता। अंदर की आंख अंधी है, बाहर की नहीं। वो कहते हैं ना कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका। कल किसी ने मुझे एक छोटी सी वीडियो भेजी, हैरत हुई देख के बहुत। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, लेकिन होगा। आज सेल फोन हमारे हाथों में जो हमारे सारे काम करते हैं। और उन्होंने ये जो वीडियो भेजी उसके अंदर क्या था कि एक छोटा सा बैंड है, प्लास्टिक का बैंड है, सिर्फ आपने हाथ में एक बैंड पहना हुआ है और डिफरेंट कलर्स के, और आप ऐसे हाथ हिलाते हैं तो आपकी ये कलाई के ऊपर पूरा आपका ये आईफोन की स्क्रीन बन जाती है, खेलने कूदे। और वो शख्स पानी में हाथ करता है, पानी से निकाल के ऐसे करके कर रहा है, वायर कहीं काम कर रहा है कुछ भी, तो यहाँ हाथ करता है तो यहाँ घड़ी बन जाती है। किस तरह से अब लेटेस्ट टेक्निक्स क्या हैं कि ये सेल फोन भी मारो गोली, आपके हाथ स्क्रीनें बन रहे हैं, आपके स्किन के ऊपर ये सारे रिएक्शन है। और उसमें उन्होंने तरीका भी लिखा हुआ है कि ये हो कैसे रहा, ये कैसे होगा। तो जब इतना कुछ कर लिया तो इस हाथ को बनाने वाले को नहीं पहचान सके। इस तरह के लोगों को क्या आप मुस्तबसिर कहेंगे? बाज लोग दुनियावी नाते से बात करें ऐसे लगते हैं इनसे ज्यादा अक्लमंद ही कोई नहीं, इतनी खूबसूरत बातें करते। इवन हमारे अपने पाकिस्तानी पढ़े लिखे जो ब्रदर्स हैं, जो PhD होल्डर्स हैं, जो मीडिया पे आते हैं, जो स्क्रीन्स पे बैठ के इतनी अच्छी अक्लमंदी की बातें करते हैं, लेकिन बाज दफा नमाज भी नहीं शायद पढ़ते होंगे, बाज दफा सुन्नतों से दूर, बाज दफा दीन के अंदर बहुत एतराज करने वाले। तो याद रखिए कि ये बहुत अक्लमंद लोग जरूरी नहीं होता कि दीन पे आए। बाद वो सीधे साधे बद्दू आते थे अल्लाह के नबी के पास और कभी कुछ कहते थे, अल्लाह के नबी दीन के, अच्छा ये हम यही करेंगे, चले गए। कहा अच्छा जो कह के गया अगर ये करेगा तो जन्नती है। तो दीन के लिए कोई बहुत इंटेलेक्चुअल होना जरूरी नहीं, सीधा साधा बंदा भी इस बात को समझ आ जाती है उसको। असल बात यह कि इंसान दीन के अंदर मुस्तबसिर हो, ऐसा बंदा खुशकिस्मत है कि जिसको अल्लाह ने समझ भी दी हो और वो अपनी सारी समझ अल्लाह के लिए करे। अगली दो आयतों में उन अक्लमंदों का नाम आ गया जिनको अपने वक्त की कामयाब तरीन शख्सियात आप कह सकते हैं। आयत 39, वह कारून व फिरौन व हामान, और इसी तरह हलाक किया हमने कारून, फिरौन और हामान को भी। कौन थे जी कारून, फिरौन और हामान? पीछे इनका जिक्र गुजरा। कारून था दौलत का सिंबल, लिख लीजिए मटीरियलिस्टिक अप्रोच का सिंबल। फिरौन क्या था? सियासी लीडर, सियासी फितना। और हामान क्या था? मददगार था, वजारत का फितना, या जिसको आप कह सकते हैं कि दुनिया में बड़े लोग जिन लोगों के जरिए से काम कराते हैं। अल्लाह सुबहान तआला ने इधर उन सब के नाम इकट्ठे करके कहा कि थे तो बज़ाहर ये बड़े अक्लमंद लेकिन अल्लाह ने इनको तबाह कर दिया। ये वाह किस चीज से जोड़ रही है आप बता सकते हैं? ऊपर वाली बात से कि जिस तरह उनको हलाक किया इसी तरह कारून, फिरौन और हामान को भी हलाक किया। वलक़द जाअ मूसा बिल बय्यिनात, इनके पास आए थे मूसा वाज़ेह निशानियां लेकर, किया क्या? फस्तकबरू, फिर उन्होंने तकबर किया। फिल अर्दी जमीन में, वमा कानू साबिकीन, लेकिन वो हमारी पकड़ से निकलने वाले ना थे। क्या पता चला कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो सारी एटॉमिक एनर्जियां, न्यूक्लियर एनर्जियां, सितारों पे कमंदे, गैलेक्सीज को ढूंढने वाले लोग भी जमीन बोस हो जाते हैं। अल्लाह किसी की तरक्की से डरता नहीं है, इसलिए कि वो बड़ा बने अल्लाह ने उनको छोटा कर दिया। फकुल्ल नखज़ना बिज़म्बिही ही, बस हमने हर एक उनके एक गुना की पादाश में पकड़ा। यहाँ लफ्ज बिज़म्ब को हाईलाइट कीजिएगा, लफ्ज क्या आना चाहिए था यहाँ हमारे ख्याल के मुताबिक? फकुल्लन अखज़ना बिज़नूबिहिम, फिर हमने पकड़ा उनको उनके गुनाहों पे? नहीं, अल्लाह ने वाहिद और नकिरा दो लफ्ज लिख लें, वाहिद भी है और नकिरा भी है। एक ही गुना बहुत है जिसपे अल्लाह बंदे को पकड़ ले। जैसे शैतान को, इब्लीस को एक सजदे के इनकार पर अल्लाह ने पकड़ लिया था, अल्लाह किसी को एक सजदे पे बख्श दे और एक सजदे के इनकार पे पकड़ ले, ये उसकी मर्जी है। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, और इनमें वो भी थे जिन पर हमने पत्थरों की आंधी भेजी। कौन सी कौम थी सब बोले? कौम लूत थी, जलजले से तलपट हुए और ऊपर से पत्थर बरसे। सूरत अल हकम इनका जिक्र आता है आयत नंबर 6-7 में, वम्मादुहुखलिकुबिरीहिन सरसरेनातिया, कौम आद के लोग हलाक किए गए तेज आंधी से जो इन पर मुसल्लत की गई 7 रातें और 8 दिन तक। गिरे हुए तनों की तरह, खजूर के जो होते हैं उनकी तरह ये पछड़े पड़ते हैं। कहते हैं कि इनके ऊपर जो हवा चली उसमें कंकर भी थे और पत्थर थे, गोलियों और मिसाइलों की तरह इन पर बरसते रहे। और इतनी तेज आंधी थी जो ऊपर ऊपर से इनको पटक कर जमीन पर मार रही थी। वह मिन हो मन खजत हुसई हतु, और इनमें वो भी थे जिनको चिंगाड़ ने पकड़ा। कौन सी कौम है सब बोले? कौम समूद और मदियन। तीसरे अब आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगी। वह मिन हो मन खसफ न बिहिल अर्दा, और इनमें वो भी थे जिनको हमने जमीन में धसा दिया, कारून को और उसके लश्करों को। वह मिन हो मन अगरकना, आप बोले। اور وہ بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، فرعون اور قوم نوح تھی جی سب کے. دیکھیے اللہ نے ان کے نام نام لے کے پیش کر دیے کہ کس کو کیسے مارا. اور ساری باتیں سن کے یاد رکھو کہ وما کان اللہ لیسلمہم، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ ظلم کرے ان پر. یعنی نعوذ باللہ اللہ کا ظلم نہیں تھا قارون پہ، بڑا بولا تھا بیچارہ اور اللہ نے اس کو زمین میں ڈال دیا. نہیں، اللہ نے پیدا کیا تھا اس قارون کو، اللہ نے دولت اور مال دیا تھا، اور اسی رب نے اس کو زمین میں ڈالا. کیوں؟ لیسلمہم، کیونکہ ولکن کانوا انفسہم یسلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ تھے. کیا پتا چلا کہ اللہ کبھی کسی کو نہیں پکڑتا، بے گناہ کو نہیں اللہ پکڑتا. تو یہ سب نبیوں کے قصے تھے. اگلی آیت ہے تو آخری آیتوں میں سے، لیکن ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے یا تلاوت سنیں گے. نبیوں کے قصے بار بار سن کے اب اثر ہی نہیں ہوتا، ڈر ہی نہیں لگتا، خوف ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ میں ڈرنے والا بنا دے.
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون